आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। विदेश मंत्री पेनी वोंग और उनके ब्रिटिश समकक्ष डेविड लैमी ने रक्षा बल में महिलाओं की भूमिका के महत्व पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने ये बयान आज दोपहर डार्विन में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा करते समय दिया, जहां टैलिस्मैन सेबर अभ्यास किया जाता है। दोनों नेता ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की आगामी भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। वोंग का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2000 में विकसित महिला शांति और सुरक्षा एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर गूगल का कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध में यूट्यूब को शामिल करती है तो वे कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा। पिछले साल जब संसद में इस बिल पर चर्चा हुई थी तब वीडियो प्लेटफॉर्म को नियमों से छूट दी गई थी, लेकिन जून में ई सेफ्टी कमिश्नर ने संचार मंत्री को सलाह दी थी कि इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। नेशनल पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड ने चैनल 10 से कहा कि वे ये समझना चाहते हैं कि यूट्यूब पर क्यों बदला जा रहा है। उनका मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि इन बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के पास ऐसी तकनीक है जिससे वे खुद इस मुद्दे पर हमारी और परिवारों की मदद कर सकते हैं, लेकिन कानूनी धमकियां देने का यह व्यवहार एक अच्छे कॉरपोरेट नागरिक की तरह नहीं है। केंद्र सरकार ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि यूट्यूब को दिसंबर में लागू होने वाले सोशल मीडिया प्रतिबंध में शामिल किया जाएगा या नहीं। वहीं वाणिज्य मंत्री डॉन फेरल ने ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी बीफ के आयात से प्रतिबंध हटाने के निर्णय का बचाव किया है और इस दावे को खारिज किया है कि ये कदम ट्रंप प्रशासन के दबाव में उठाया गया। फेरल ने पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी के साथ फोन कॉल के दौरान अमेरिकी बीफ आयात का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनका कहना है कि ये निर्णय एक स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया के तहत लिया गया था जो अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑस्ट्रेलियाई आयात पर टैरिफ लगाने से पहले पूरी की गई थी। उन्होंने स्काई न्यूज को बताया कि देश में अमेरिकी बीफ की अनुमति देने से राष्ट्रीय बायोसिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन ने उस नई रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया कि 2016 से लेबर सरकार ने संधि वार्ताओं पर लगभग $400 मिलियन खर्च किए हैं। ये विश्लेषण रूढ़िवादी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स द्वारा प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई कि इस मुद्दे की लागत बढ़ सकती है क्योंकि विक्टोरिया इस साल के अंत में संसद में एक संधि विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है। एलन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि खर्च केवल संधि वार्ताओं पर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये कहना गलत होगा बल्कि पूरी तरह से झूठ होगा कि आज जो निवेश किया जा रहा है वे केवल वार्ताओं पर है। हम पिछले 8 सालों से विक्टोरिया में एक लंबी और स्थिर यात्रा पर हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विदेश मामलों और व्यापार विभाग ने पुष्टि की है कि गाजा तट के पास इजरायली सेना द्वारा पकड़ी गई एक नाव पर 2 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सवार थे। एक प्रवक्ता ने बताया कि नाव पर कुल 21 सदस्य थे जिनमें ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार तानिया साफी और मानवाधिकार कार्यकर्ता रॉबर्ट मार्टिन शामिल हैं। प्रवक्ता के अनुसार टेल अवीव में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी स्थानीय प्राधिकरणों से संपर्क में हैं और वाणिज्य दूतावास अधिकारी प्रभावित नागरिकों को सहायता देने के लिए तैयार हैं। गार्जियन के अनुसार साफी और मार्टिन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन नामक प्रो पैलेस्टीनियन कार्यकर्ता समूह के साथ यात्रा कर रहे थे। नाव को इजरायली सैनिकों ने तब रोका जब वे गाजा के पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। इजरायली विदेश मंत्रालय का दावा है कि नाव ने गाजा के तट से सटे समुद्री क्षेत्र में अवैध प्रवेश किया, जबकि कार्यकर्ता समूह का कहना है कि उसका दल क्षेत्र में सहायता पहुंचाने की कोशिश के दौरान गैरकानूनी हिरासत में लिया गया है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में आज सुबह सीढ़ियों पर भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 28 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ANI को बताया कि रविवार और सावन होने से भीड़ सामान्य से कहीं अधिक थी। धक्का मुक्की के बाद भगदड़ की स्थिति हुई। प्रशासन फिलहाल घटना की वजह की जाँच कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि स्थानीय पुलिस व बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हैं। भारत में मंदिरों में भगदड़ की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हाल ही में 2025 में गोवा के श्री लेराई देवी मंदिर और 2024 में हाथरस सत्संग में भी ऐसी घटनाओं में कई जाने गई थी। इसी के साथ 27 जुलाई 2025 के संक्षिप्त समाचार यही समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।